जी आयत नंबर 229, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अत्तलाकु मर्रतान, और तलाक दो बार है। अगर आप लफ्ज़ मर्रत को भी जहन में रखिए, जो अभी हमने तफसीर में बात की थी, तो वही लफ्ज़ यहाँ दोबारा सोच में आ जाता है कि तलाक दो मर्तबा है। ये लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, और अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको यहाँ से ही बात समझ आ जाती है कि अल्लाह सुबहाना ताला तलाक देने का तरीका क्या बताते हैं कि दो मर्तबा दो। कैसे दो, क्यों दो, ये भी हम इंशाल्लाह आयत के साथ चलेंगे तो पता चल जाएगा। अत्तलाकु मर्रतान, तलाक तो दो बार है। आप लिखिए इसके आगे एक छोटा सा जुमला, जिसके बाद रजू जायज़ है। कौन सी? हम तो हमेशा सुनते हैं कि तलाक़े तीन हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ दो बार क्यों कह दिया? तो इसके आगे बात आप वाज़े कर लें खुद से कि वो तलाक जिसके बाद मर्द रुजू कर सकता है वो दो बार है। ये क्यों हुआ? दौरे जाहिलियत में औरतों पर जहाँ और बहुत सारे जुल्म थे, उसमें एक जुल्म क्या था कि मर्द अपनी बीवियों को तलाक देते, और उसके बाद जब वो इद्दत से फारिग होने वाली होती फिर रुजू कर लेते। कुछ दिन रखा उसको अपने साथ, फिर गुस्सा आया, फिर तलाक दे दी। अब होता क्या कि एक औरत कई कई साल तक मुसलसल इद्दत में रहती। बात वैसे तलाक के बाद रुजू का इख्तियार अनलिमिटेड था। नतीजा क्या होता था कि लोग एक दफ़ा तलाक देते, फिर औरत कुछ दिन इद्दत में होती, जिस तरह से भी वो उस हालात में रहती, उसके बाद दोबारा तलाक दे देते, फिर कुछ दिन रुजू किया, कुछ दिन, जिसको आप अपनी ज़बान में कह लें कुछ दिन अच्छे रहे तो बाकी फिर बिगड़ गए। जैसे कुछ मर्दों का मिजाज होता है, चार दिन उनका मूड अच्छा है तो चार दिन ख़राब हो जाता है। अब होता क्या था कि ये औरत पे जुल्म था। ऐसी औरत ना तो बीवी थी, ना बेवा थी, ना शादीशुदा लगती थी, ना मुतल्लिका लगती थी। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जैसे दूसरे अहकामात को नरम किया, जैसे कि शादियों का मसला है, आगे हम पढ़ेंगे सूरह निसा में, अनलिमिटेड शादियां थी, 100-100 शादी करते थे, इस्लाम ने उसको चार की हद पे रोक दिया। और आज लोग उसी पे इस्लाम को बदनाम करते हैं कि इस्लाम चार शादियों का कहता है, हुक्म नहीं देता ना फ़र्ज करता है, बल्कि उसने 100 को चार पे लाया, दैट्स इट। सेम यही थी कि तलाकों की कोई हद नहीं थी, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अब हद, अब बस खेल ख़त्म। एक दफ़ा किया है, ठीक है दे लो, क्या करते हो, कुछ अरसे के बाद दोबारा देते हो, जो ही दो के बाद तुमने अब तीसरी तलाक दे दी, तब वो औरत दोबारा नहीं तुम्हारी बीवी बनेगी। तो गोया के ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। आगे क्या होगा, लफ्ज़ों पे रहेंगे, आयत को देखेंगे तो बात ज़्यादा समझेंगे। अब क्या करो, दो तलाकों के बाद फइमसाकुम बिमारूफ, अब रोक लो उनको अच्छे तरीके से, यानी अब रोक लो, रोकने के लफ्ज़ के नीचे लिख लीजिए रुजू कर लो, यानी दो तलाकें दे भी चुके हो, कोई बात नहीं अब रुजू कर लो, और अगर रुजू नहीं करते तो औ तसरीहुम बी एहसान, अब छोड़ दो उसको एहसान के साथ। ये जो तसरीहुम बी एहसान है ना, ये तीसरी तलाक है। कैसे? कि दो दफ़ा तुम्हें चांस मिला था अपनी बात को बदलने का, मेकअप करने का, कर लेते तो बहुत अच्छा था, नहीं किया तुमने तो अब ये चांस लिमिटाइज कर दिया गया। और लिमिट क्या है? दो दफ़ा। दो दफ़ा के बाद अगर तुम अपनी बीवी को तीसरी तलाक दे देते हो तो ये है तसरीहुम बी एहसान। एहसान के लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, क्या कहा जा रहा है? छोड़ो, तलाक दो, और किस तरह छोड़ो? एहसान के साथ, निभा है मारूफ के साथ और छोड़ना है एहसान के साथ। अमूमन हमारे यहाँ ताल्लुकात में लोग अफरात और तफरीत पे चले जाते हैं, एग्जेजरेट कर लेते हैं, रखेंगे तो इतने अच्छे कि घर, बंगला, कोठी, सब कुछ उस बेगम के नाम, और जब छोड़ते हैं तो उन्हीं चीज़ों पे मुसीबत बनी होती है और उस पे झगड़े शुरू हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसाफ करो, असूल के साथ रहो, तरीके से रहो, ताकि ना तुम किसी पे जुल्म करो ना कोई तुम पे जुल्म करे। इतनी बात वाज़े, ठीक है। तलाक का मौजू बिल्कुल विरासत के मौजू की तरह, जितनी बात होती है ना उसके ऊपर रहें, दैट्स इट। वो समझ आ जाए तो कहें मुझे 100% बात समझ आ गई है, मैंने इसको समझ लिया, मान लिया। इसके बाद क्या करना है? अब दो हो गई, रख लो तो भी अच्छी बात है, रखोगे तो भी अच्छी तरह रखना है, और नहीं रखोगे तो दूसरी तरफ चलोगे। अब आप देखिए कि लफ्ज़ जो है ना मर्रतान, इसमें ही दो बार है, वन बाय वन, जैसे भी आपको खुलासे में बताया गया, एक महीने को एक मर्रा, दूसरे महीने को दूसरा मर्रा कहा गया, तरतीब से मर्रा मर्रा बार बार दो। इस पे जमहूर उलमा यानी मेजॉरिटी ऑफ उलमा का इत्तफाक है कि तलाक इकट्ठी तीन तलाकें देना ये गुनाह है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अनहु उस शख्स को दुर्रे लगवाते थे। दुर्रे क्या होते हैं? कूड़े लगवाते थे जो खड़े खड़े अपनी बीवी को तीन बार तलाक कह देता था। ठीक है, तलाक तो हो ही जानी है, अभी तो आपको बता दिया ना कि जो ही 3 महीने खत्म हुए तलाक तो हो गई, लेकिन गुनाह की बात है। इसी तरह हमने तलाक के तरीके में देखा कि पीरियड्स में अगर कोई मर्द तलाक दे देता है, कोई जब गुस्से में आके मर्द देते हैं, तो कोई ये थोड़ी देखते हैं कि किन हालात में। फिर जिस तोहर में करें उसमें एक शर्त मैंने खुलासे में नहीं बोली, वो यहां नोट कर लें कि जब मर्द बीवी को तलाक देता है पाकी की हालत में देगा, तो उस पाकी के दौरान यानी पीरियड से फारिग होने से लेकर तलाक देने के दौरान वो उसे गुर्बत नहीं कर चुका, यानी एक दफा भी उसने ताल्लुक ना शौहर बीवी वाला कायम किया, ये भी शर्त है। कितनी पाबंदियां लगा के तलाक दिलाई जा रही है, लेकिन अगर कोई ये सब का ख्याल नहीं करता फिर क्या होगा? पीरियड्स में दे दी, गुस्से में दे दी, सोबत की भी थी फिर भी दे दी, तलाक हो जाएगी लेकिन मर्द गुनाहगार होगा, ये बात है। अब आगे देखिए कि मर्रत उनकी बात को समझ के उसके बाद अल्लाह सुबहाना ताला ने ये रखा, ये बात एक खास मौके पे नाजिल हुई थी, मैं आपको वो वाक्य पढ़ के सुना देती हूँ। ज़माने जाहिलियत और इब्तदाई इस्लाम में दस्तूर क्या था कि लोग अपनी बीवियों को बगैर किसी तादाद के यानी अनलिमिट तलाकें देते रहते थे। एक तलाक की मुद्दत ख़त्म होने से पहले रजू कर लेते, फिर तलाक दे देते, मकसद औरतों को नुकसान पहुंचाना था। हमारे यहाँ इसको बाज़ जाहिल पता क्या कहते हैं कि ना रखेंगे ना छोड़ेंगे, यानी बस तुम्हें बसने नहीं देंगे, वही तरीका था। इस जालिमाना फेल से बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, मैं ना तुझे अलग होने दूंगा और ना तुझे पनाह दूंगा। औरत ने पूछा, वो कैसे? तो इसने कहा कि मैं तुझे तलाक दूंगा और हर बार इद्दत गुजरने से पहले तुमसे रजू कर लूंगा। वो औरत हज़रत आयशा के पास आई और उनको ये बात सुनाई। हज़रत आयशा खामोश रहीं, अल्लाह के नबी सल्लम तशरीफ़ लाए, आपको बात सुनाई गई, आप खामोश रहे, यहाँ तक कि आयत नाजिल हो गई कि अत्तलाक मर्रतान। देखिए कुरान की आयतें औरतों के कहने पे नाजिल हो रही हैं, कद समय अल्लाह में पढ़ेंगे पूरी सूरत औरतों के मसले पे नाजिल हो गई। तो इस्लाम औरत के मसाइल को इतनी अहमियत देता है कि उसको फौरी हल करना चाहिए। तो कहा कि आप ये आयत नाजिल हो गई, अब मर्द को दो तलाकों के बाद रजू का हक नहीं है, इसको रोक दिया गया। एक दफा तलाक देने के बाद दूसरी तलाक के बीच में कुछ वक्फा हो, तफसीर अरबी की है, इमाम शौकानी मुफस्सिर हैं, कहते हैं कि मर्रतन बाद मर्रत, एक बार तलाक देने के बाद दूसरी तलाक कब होगी? ला तल्लाकतानि दफ्फतन वाहिदा, दो तलाकें एक साथ नहीं होती। यानी इस सारे लफ्ज़ों पे आप गौर करते जाएं तो आपको तलाक का तरीका समझ आ जाएगा कि इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, अलग अलग दी जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी को 2 रुपए एक ही दफ़ा में दे दिए, आप किसी को कहते हैं ये लो 2 पाउंड्स ले लो, ठीक है, और एक तरीका क्या है कि आप उसको देने तो दो ही चाह रहे हैं लेकिन आप कहते हैं 1 पाउंड अभी ले लो, एक तुम्हें अगले महीने दूंगा। तो जो ये कैफियत है ना, एक अभी ले लो दूसरी बाद में, इसको मर्रतन कहते हैं। और अगर आप किसी को इकट्ठे 2 पाउंड दे देंगे तो वो एक दफ़ा हो जाएगी। तो यहाँ से भी इशारा मिल गया। अब करना क्या है? वला यहिल्लु लकुम, तुम पे हलाल नहीं, लिखिए किसके लिए? तलाक देने वाला मर्द, कुम वो मुसलमान मर्द जो अपनी बीवी को तलाक देता है, क्या हलाल नहीं? अन ताखुजू, ये कि तुम ले लो, वापस ले लो, टेक इट बैक, क्या? मिम्मा अतैतुमूहुन्न शैया, उसमें से कुछ भी जो कुछ तुमने उनको दिया है। मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है कि तलाक देने के बाद अपनी बीवियों को जो तोहफे तहाइफ दिए थे, कोई शादी का तोहफा था, कोई जेवरात थे, कोई हक महर था, तुम वापस नहीं ले सकते। लफ्ज़ शैयन पे गौर कीजिए, छोटी से छोटी चीज़, माइन्यूट थिंग, 1 रुपए की भी चीज़ वापस नहीं दे सकते। होता क्या था कि पहले शौहर गुस्से में आके तलाक देते थे, और जब तलाक दी तो बीवियों को जो अच्छे दिनों में दिया दिलाया होता था ना, वो वापस मांगते थे। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जो तोहफा देकर वापस मांगे वो ऐसे ही है जैसे कुत्ता कह करे और उसको चाट ले। हम तो मंगनियों के जोड़े तक वापस फिर लेते हैं, जब रिश्तेदारियां होती हैं पहले देते हुए नहीं रुकते, सास को भी जोड़े, बहू को भी, और नंदों को भी, और खाला सास और पुपी सास, रुकते ही नहीं, जिसी दिसी बात है, रुकते ही नहीं। और जब फिर मंगनी छुटती है तो सिर्फ वो नहीं मांगते जो लड़की को दी, वो कहते रिश्तेदारों से भी लेके आओ, हमें पैसे दो, फिर खाना भी खिलाया था। ये जुल्म है, जहालत भी और जुल्म भी है। और जहाँ जुल्म और जहालत जमा हो जाए वहाँ खैर नहीं हो सकती। इस्लाम का मिजाज देखिए कितना खूबसूरत है। यही बात सूरत निसा की आयत 20 में भी आएगी कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन वआतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारा फला ताखुज़ू मिन्हु शैया। अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा कर ही लो, ठीक है तुम्हारी इससे नहीं निबरी, दूसरी ले आओ, तो ख्वाह तुमने उसे ढेर सारा माल दिया हो, खजाने के तौर पे वापस ना लेना, इतनी बड़ी बात है। खैर इल्ला अल्लाह यकीमा हुदूद अल्लाह, मगर ये कि दोनों को अंदेशा हो कि वो अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों को कायम ना कर सकेंगे। मतलब क्या है कि तलाक की नौबत कब आए, नंबर एक, जब शौहर और बीवी दोनों को अब लग रहा है कि हम साथ रह ही नहीं सकते, ठीक है, शौहर बीवी के हकूक नहीं दे सकता और बीवी शौहर के हक नहीं दे सकती, वो उसकी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर सकता, वो उसकी जिम्मेदारी ले नहीं सकती, तो कहा फिर मजीद खराबी की सबसे बेहतर है कि थोड़ी सी इनके अंदर जुदाई कर दो। अच्छा फिर क्या होगा, फ़इन खिफ़्तुम, फिर अगर तुम्हें खौफ हो, किसको हो, लिखिए शौहर बीवी दोनों को या वलियों को जो ऊपर के लोग हैं, अल्लाह यकीमा हुदूद अल्लाह, कि ये दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की हदों पे कायम नहीं रहेंगे। अब यहाँ देखिए लफ्ज़ थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहता है, खिफ़्तुम में जमा है, तुम सबको खौफ हो, यानी प्लूरल का सीगा है, जबकि आगे यकीमा वो दोनों, तो किसको कहा जा रहा है, नहीं, खौफ किसको है। अब यहाँ से खुला के मसाइल है, पहली बात है तलाक दो हैं, वो तलाक जिसमें मर्द रुजू कर सकता है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद दो चॉइसेस हैं, इमसाकुम बिमारू ले लो, वापस ले और रुजू कर लो और सारी पिछली बातें बुला के ज़िंदगी शुरू कर दो, नहीं तो तसरीहुम बेहसान, छोड़ दो एहसान के साथ, दे दो और भी दे दो, कुछ और दे दो, जैसे शादी की रात मुंह दिखाई का तोहफा दिया था ना, अब मुंह जाने का भी तोहफा दे दो, कोई बात नहीं, जुदाई का भी गिफ्ट दे दो, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है, ये बात हो गई। और तलाक दे रहे मर्द तो कुछ ले नहीं सकता, हत्ता कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो दिया है वो सब तुम्हें उसको देना पड़ेगा, शय्यन का लफ्ज कह दिया, इतनी बात एक खत्म हो गई। अब दूसरी सूरत जो यहां से शुरू हुई है ना बात, अल्लाह यकीम हुदूद अल्लाह, यहां से अब औरत की नापसंदीदगी शुरू हो गई है कि अगर औरत ने नहीं रहना, उसको नहीं पसंद आ रहा कि हम रह सकते हैं, और इस सूरत में अब अल्लाह की हदों के टूटने का डर है, तो क्या करे, फला जुनाह अलैहिमा, अब इन दोनों पे कोई गुनाह नहीं है, किस मामले में, फी मफ्तदत बिही, कि बीवी अपना पीछा छुड़ाने के लिए कुछ दे दिला दे, इनको हाईलाइट करके एक रंग के साथ लिख ले खुला। देखिए कुरान ने कोई ये टर्म्स नहीं इस्तेमाल की, ना कोई नोट है, कोई ऐसे नहीं लिखा हुआ तलाक के मौजू पे, ये सारी टर्मनोलॉजीज फुकहा ने और उलमा ने बाद में कुरान की आयतों के ऊपर गौर व फिक्र के बाद बनाई है, इसलिए टर्म्स को उलझने की बजाय अहकामात समझ लें। मैं आपको छोटी सी एडवाइस करती हूँ कि एक एक आयत में दो दो तीन तीन चीज़ें हैं, जितनी आयत में एक मसला वाजे हो गया ना, जैसे अभी एक वाजे हो गया है पहला हिस्सा, उसको मिसाल है कि आप लाइट ग्रीन हाईलाइट कर ले और उसके ऊपर आप लिख लें मर्द के तलाक देने की सूरत में, आप जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं ना इसको आप येलो से कर लें और इसके ऊपर आप एक टॉपिक सब टाइटल दे दें, औरत के तलाक मांगने की सूरत, यानी खुला के मसाइल। इसमें क्या है कि औरत अपने शौहर को कुछ ना कुछ दे सकती है, देना चाहे तो दे दे, और दे के उससे अपने आप को छुड़ा ले, जिसको हम खुला की सूरत में देख चुके, तिल का हुदूद अल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तातदूहा, देखो इनके करीब ना जाओ, इनसे तजावुज़ ना किया करो, अल्लाह के असूलों को मत तोड़ो, वरना क्या होगा, सवाल पैदा है, वमन यतअद्द हुदूद अल्लाह, और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावुज़ करता है, यानी गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स, फौलाइक हुमुज़्ज़ालिमून, बस यही लोग जालिम हैं। क्या जुल्म है इनका कि इन्होंने एक बने बनाए घर को तोड़ दिया, अल्लाह के दीन को खेल बना दिया। क्या पता चली इस सारी आयत से बात, कि नंबर एक ये है कि कोई भी सॉलिड सिस्टम, कोई सोसाइटी जो है उसकी बुनियाद औरत और मर्द के बाहमी ताल्लुक पर है। दूसरी बात पता चलती है कि औरत और मर्द दोनों को इस मौजू पे पूरा इल्म भी होना चाहिए और उनको इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। एक और बात पता चलती है कि निकाह एक पाकीज़ा माशरे की तरफ पहला कदम होता है। इसी से सोसाइटी में ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है। तबीयतों और मिजाजों में अगर फ़र्क हो और सोने पे सुहागा ये कि तालीम और तरबियत भी ना हुई हो, तो घरों में जो इख्तलाफात होते हैं ना, वो नोक झोंक से बढ़ के तलाक तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अल्लाह के दीन को सीखना और अमली दीन को सीखना ये बहुत लाजमी होता है। और जब इंसानों के अंदर मिजाज में तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, शुक्र, आजजी होती है ना, तो ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अल्लाह ने बार बार ये बात कही कि दीन को इंतखाब में लाओ। लड़की में अगर दीन होगा, डेफिनेटली गुस्से पे काबू पाएगी, दरगुजर करेगी, फॉरगिविंग होगी, केयरिंग होगी, शेयरिंग होगी। मर्द में दीन होगा, गुस्सा आएगा लेकिन पी जाएगा। जो अल्लाह से नहीं डरता ना, वो बंदों से भी नहीं डरता। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं इन सबको छोड़ दो और एक दूसरे के साथ अच्छे मामले से रहो। यहां से आपको बिल्कुल औरत मर्द के हकूक बराबर दिख रहे हैं, दोनों को हक है। तरीका कर फर्क है, लेकिन सूदिंग दोनों के लिए। सूरत निसा की आयत 9 में भी आते हैं, वाशिरु हुन्ना बिल मारूफ, बीवियों के साथ अच्छी तरीके से रहो। सूरत निसा में हम पढ़ेंगे आयत 34 में अच्छी बीवी की खूबियां लिखी है, फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुन लिल्ग़ैबि बिमा हफिज़ल्लाह, कि जो नेक बीवी हैं वो तो मर्दों के हुक्म पे चलती हैं और मर्दों की गैर मौजूदगी में अल्लाह की निगरानी में उनके माल और अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं। एक और बात, जो रिवायत ज़यीफ़ है लेकिन हवाला मिल जाता है, कि हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा तलाक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिश्कात की रिवायत है, कि जो औरत अपने खाविन से बिला ज़रूरत तलाक मांगती है, उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तो ये सारी चीज़ें इंसान जहन में रखे तो ना जुल्म करेगा ना जुल्म सहेगा। और ऐसी चीज़ों को अल्लाह ताला की अगर हिदायत के मुताबिक पूरा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने मसाइल आज दुनिया में, ये सब के सब ख़त्म हो गए। आप कहते हैं ना कि दुनिया में इस्लाम आए तो क्या होगा, मैं सोचती हूँ कि अगर आज हम मुसलमानों ने साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन कामों में मेहनत छोड़ी भी है ना, रिसर्च नहीं भी कर रहे, अगर आज हम पूरी दुनिया वालों में मिलकर एक ट्रीटी कर लें, ट्रीटिज़म जिसको आप कहें, सारे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, में पाकिस्तान, चाइना और सऊदी अरब, जो भी है वो सब मिल जाए, दुनियावी तरक्की तुम वेस्टर्न लोग करो, चांद पे कमंडे डालो, रिसर्च करो, हॉस्पिटल्स बनाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुआशरती इकदार, जिसमें एथिक्स, जिसमें जाबते मुसलमानों के हाथ में दे दो, तो ये दुनिया जन्नत होगी। सच्ची जो बात है, इस्लाम का निज़ाम इतना कम्पैक्ट और इतना खूबसूरत है कि इसके अंदर कोई हल्की सी झोल भी नहीं है, और कोई इंसान ये निज़ाम दुनिया को दे नहीं सकता था। देखिए, मशीन जो होती है ना, जो मशीन बनाता है, वो उसको चलाने का तरीका भी बताता है, उसको पता होता है कि चीज़ कैसे चलनी है। अल्लाह ने हमें बनाया, इंसान भी तो मशीन नहीं है, वो हमें ये कैटलॉग साथ दे रहा है कि तुम ज़िंदगी कैसे गुजारो, क्या करो। आप इसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारें, कोई तलाक का सवाल ही नहीं है। कभी कोई एक केस आप अपने नाना दादा से पूछिएगा कि आपके दौर में भला कितनी कुछ तलाकें होती थी, कोई नहीं थी होती, लोग तो इतने ही थे ना। अब ये जब बड़े खुश होते हैं ना, वेस्ट में बड़े इंतजाम आते हैं, क्या इंतजाम आता है, वो ऐसी औरतों को बहुत प्रोटेक्शन देते हैं और उनके बड़े हकूक हैं, मिसाल देती हैं इसी में, और इसी तरह की कुछ और बातें भी आप देखते हैं, बूढ़ों के लिए बहुत हकूक हैं। असल में पता क्या है, किसी मुल्क में ऐसी बहुत सारी चीज़ों का मौजूद होना उनके डिक्लाइन की अलामत है। कोई मुसलमान हुकूमत होगी ना इंशाल्लाह, जब कभी वहाँ कोई एक ओल्ड होम नहीं होगा, क्योंकि रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा वक्फिज लहुमा जनाह मिन अज़ल्लिरा मिन रहमा। अल्लाह तो बच्चों को सिखा रहा है कि अपने माँ बाप के आगे तुम उनको झुक के रहो, वो तुम्हारे पास आ जाए, तुम अगर उनको बुढ़ापे में पाओ तो खिदमत करो। किसने लेने ओल्ड होम्स, सारा खर्चा गया, कट डाउन, सारे ओल्ड होम्स के खर्चे जो हुकूमत चलाती है वो हुकूमत पे से बोझ निकल गया। जब इस्लामी निज़ाम आएगा ना, एक भी डे केयर सेंटर नहीं होगा, क्योंकि औरत ने रहनी घर में, माँ से ज़्यादा बच्चे को कौन पाले। तो सारे ये जो डे केयरिंग पे खर्चे लग रहे हैं सब खत्म। आप कहते हैं कि हुकूमत जो है वो ऐसे रेस्क्यू सेंटर्स बनाती है, यहाँ पता नहीं उनको क्या कहते हैं, लेकिन जैसे ऐसी औरतों को पनाह देते हैं, सोशल हेल्प पे देते हैं, कितने लोग हैं, कितनी सोशल पे हेल्प पे लड़कियां चल रही हैं, इस्लाम आएगा तो इसकी जरूरत ही नहीं रहनी। वजह क्या है कि लोगों को तो पहले सिखा दिया आशिरु हुन्ना बिल मारूफ और जुल्म ना करो, वमै यतअद्दा हुदूद अल्लाह। जब मुस्लिम मुआशरा आता है ना, उसमें इतने चौ चौंसलों की जरूरत ही नहीं रहती, सीधा सीधा। और वो सारा पैसा बच के पता कहाँ लगता है, फलाही कामों में, नशरोशात में, दीन की तबलीग में, लोगों को खालिक से जोड़ो। आज इस सोसाइटीज में खालिक इसीलिए नहीं लोगों को नजर आता। वजह क्या है कि खालिक नजर ही नहीं आता, सब कुछ तो हुकूमत कर रही है। और ये हद तक हालात खराब हैं, वल्लाही मैं कहानी आपके सामने शेयर करूं आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आप सुनती कहाँ से कहानियां। अनबिलीवेबल कहानी है कि जब लोगों को गवर्नमेंट इतनी एड देने लग जाती है ना, तो ये मेरे अपने गुनाहगार कानों की सुनी हुई बात है कि अच्छी भली बीवी अपने शौहरों के घर में नहीं रहती, कहती है कि इसने तो महीने का 100 पाउंड देना है, गवर्नमेंट के घर में जाके बैठूंगी 200 मिलना। लिटरली लिटरली कमेंट्स के साथ किसी ने मुझे ये बात सुनाई थी कि अच्छे घरों की बीवियां, जरा मियाँ बोलता है तो वो फोन कर देती हैं, ले जाओ मैं, जैसे बच्चे फोन कर रहे हैं। ये कोई इज्जत है, ये कोई तरक्की है, आप इसको तरक्की कहते हैं? कल हमने बात पढ़ी शौहर बीवी के ताल्लुकात में खराबी और उसकी हदों की। जब आपने इसको बियॉन्ड दी लिमिट कर दिया, आप गे बन गए, आप लेस्बियन बन गए, आप पादरी भी बनने चाह रहे हैं और हुकूमत में भी जायज है, और आपके सारे कह लीजिए कि फौजी तक अब आ सकते हैं, पहले नहीं थे, ये अब दिन ब दिन हो रहा है। पॉप इसको भी नहीं मान रहे, बाकी बहुत सारे मजाहब ने मजहबी तौर पे मान लिया कि गेइज़म इज़ नॉट बैड थिंग, और वो क्या कहते हैं, नऊज़ुबिल्ला। आप जरा दुनिया में आंखें खोल के जी के देखें, नऊज़ुबिल्ला, यानी गेइज़ ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, और आपको पता है उनकी वेबसाइट का नाम क्या है, फातिहा जी। और जाके उनके कमेंट तो पढ़े, वो कहते हैं गॉड इज़ गे नऊज़ुबिल्ला, कि चूंकि उसका कोई कपल नहीं है तो फिर वो खुद ही खुश होगा। जिसको कह के नकले कुफर कुफर ना बाशित, अल्लाह हमें ना पकड़े इस बात पे। ये वो दुनिया जिसमें आपकी नस्लें चल रही हैं और आप उनको कुरान की डोरी दिए बगैर दुनिया से चले गए, बहुत बड़ी ठोकरें खाएंगे फिर वो भी संभल जाएंगे जब उनको कोई आप किस तरह मेरी तरह कुछ हिदायत मिलेगी। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जागने की जरूरत है। आज वेस्ट का स्टाइल ऑफ, जैसा आप कहने चाहिए ना कि पैचिंग या उनको रिहैबिटेशन, बिल्कुल कैसे, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे कोई एक जगह है, वहाँ कोई खड्डा खुदा हुआ है गहराई, और जहाँ डर है कि हर आने वाली गाड़ी उसमें गिर जाएगी या जो भी आएगा गिरेगा और उसको चोट लगेगी। अब एक तरीका उसका क्या है कि आप इस गड्ढे को बंद कर दें, मसला ख़त्म हो गया ना, आप इसको फ़ौरन कस्टडी में लें और इसको टेक केयर कर दें, ख़त्म। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक तरीका है कि नहीं 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 ऐसा करते हैं हम इसी जगह जहाँ पे ये हादसा बहुत होते हैं ना, इसके करीब एक हॉस्पिटल बनाते हैं, नंबर एक, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग गिरेंगे तो हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ेगी, तो करीब ही बना लेते हैं। फिर एक और क्या करते हैं, हम इस खड्डे के पास से एक एम्बुलेंस खड़ी कर देते हैं, जो ही को गिरे पकड़ो उसको ले जाओ एम्बुलेंस में। इस तरह की दो चार चीज़ें आप बताइए कि ग्लैमरसली क्या, हम जैसे लोग जो बाहर आते हैं तो वाह वाह करके कहा, उनको जाके कहानी हम भी तो यही सुना रहे होते हैं ना, वहाँ इतनी सहूलतें हैं, इतनी सहूलतें हैं, ये खाक सहूलतें हैं। ये जो वेस्टर्न आज लिविंग, मैं वेस्ट में मुल्कों को नहीं लेती, ये बात मेरी हमेशा से याद रखिएगा, मुल्कों को नहीं लेती, सोच को लेती हूँ। आज स्टाइल जो है ना, ये दूसरा है। इस्लाम कहते हैं खड्डे ही बंद कर दो जहां से तुम्हारे बच्चे नाफरमान होते हैं, तो वो खड्डा ही बंद कर दो जिधर से मर्दों की नजरें गंदी होती हैं, तुम खड्डा ही बंद कर दो जिधर से घर टूटते हैं। ये वेस्ट कहते नहीं, खड्डे खुले रहे सारे नफ्स के आगे डिबे, हाँ, जगह जगह हॉस्पिटल रेस्क्यू सेंटर्स बना के तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं। अकलमंदी किसकी है? इस शहर से निकलिए, यकीन करें, इस शहर से निकलिए कि वेस्टर्न लाइफ में बहुत सुकून है और बहुत सहूलत देते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बैठते हैं ना ऐसी जगहों पर, तो फौरन चले जाए, अगर दीन नहीं है तो, वरना आपके बच्चे आपके नहीं रहेंगे। यानी फिर वो हालात हो जाते हैं कि बीवियां शौहरों की नहीं रहती, शौहर बीवियों के नहीं रहते। आज जितने जुल्म है, आप देखिए कि अपने मुल्कों या बाहर के हों, सोच अगर जहालत की है ना, तो हम मक्का में जाके भी जहालत ही फैलाएंगे। तो इस्लाम कितने खूबसूरत तरीके से सिखाता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। और देखिए हमारी हमाकत की वजह से, ये उम्मत वसत की कहानी है ना, आज सारे लोग कहते हैं मुसलमान मर तो होते ही मारने वाले। लिटरली मुझे किसी ने वाक्य सुनाया कि जैसे लोग मुसलमानों के बारे में कैसे गलत समझते हैं, तो एक ब्रदर है तो वो ट्रांसलेटर है, किसी जगह भी जैसे बीच में पैचिंग करवाते हैं, मुकदमे आते हैं ना शोहर बीवी के खराबी के, तो वो सुना रहे थे। अब नाम मजहबों का लेने की जरूरत भी नहीं, ना डिटेल की जरूरत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं जिस औरत की तरफ से इंटरप्रिटेशन कर रहा था, तो वो पंजाबी समझती थी और मैं भी पंजाबी उसकी आगे वकील को एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो कहने लगी कि इतना मेरे शोहर ने जुल्म किया, इतना मेरे पर जुल्म किया, क्या कोई मुसलमान अपनी बीवी पे जुल्म करता होगा। ये उन्होंने भाई ने सुनाई ये बात कि इस तरह के हालात हैं कि लोग मिसाल देते हैं कि मुसलमान मर्द मार कूटते हैं, कितनों को मार पड़ती है और कितने मार खाते हैं, सिर्फ ये आज मेरी और आपकी जहालत का बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहे हैं लोग। और अभी भी हम कोई नहीं खुश, अभी भी हम इतने नहीं खुश कि हमें कुरान मिल रहा है। हम कहते हैं इस ओके, मिल रहा है तो अच्छी बात है। इतना ज्यादा काम करने की जरूरत है कि जिसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कितनी बार मैंने और आपने सूरह बकरा पढ़ी, कितने लोग हैं आप देखिए कि शायद रोज पढ़ते हैं बेचारे, जब उनको कोई शक होता है कि हम पे कोई जादू है, कोई टूना है। कितने लोग वज़ाइफ के लिए कुरान पढ़ते हैं। इन आयतों का वजीफा क्या करना है आपने, जरा बताइए। कोई वजीफा करना है तो कोई भाई सुबहान अल्लाह की तस्बीह, अलवदूद की, चलो अल्लाह की बात है, तल्ला की आयतें अब आप सूरह बकरा वजीफे में पढ़े और फाइन तल्ला कहा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता, आप एक लफ्ज नहीं समझते, तो खेल नहीं है। इसलिए अब अगली आयत पे चलिए और आप टर्म्स को साथ साथ लेके चलेंगे तो बात समझ आ जाएगी।